धवला पुस्तक 11 लेक्चर नंबर 4 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मट्ठजनियवेयण वहि समुत्तिन्नये जिनेनमिहुं वेयण महाहियारं विविह हियारं परुहेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलिया आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है वेदना नामक, उसमें ये जो पुस्तक है यहाँ पर इसका अभी शुरुआत में तो विषय है वेदना क्षेत्र विधान अनुयोग द्वार। दसवीं पुस्तक में हमने वेदना द्रव्य विधान की मुख्यता से बात देखी थी, यहाँ वेदना क्षेत्र विधान यहाँ से चल रहा है। वेदना का अर्थ हमने देखा था कि कर्म प्रकृति जो है उसका द्रव्य परमाणु। अब ये कर्म जो है, पहले इसका विषय क्या है उसको देख कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जो कर्म है ज्ञानावरणादि 8 कर्म, वो कितना क्षेत्र व्यापता है। तो जो जीव की अवगाहना होगी वही कर्म की अवगाहना होगी। तो उसमें उत्कृष्ट और जघन्य के भेद से, यानी पहले उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि उत्कृष्ट होती है क्या, जघन्य होती है क्या, अनुत्कृष्ट होती है क्या, अजघन्य होती है, तो होती है, सब उत्तर दे दिया। अब होती है कहने पर उसको पद मीमांसा कहा। अब वो किसके होती है उसको कहेंगे स्वामित्व। तो वो स्वामित्व की बात अभी चल रही है। तो उत्कृष्ट जो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना कौन से जीव के होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसके उत्तर में बताते हैं कि जो 1000 योजन लंबाई वाली जो महामत्स्य है उसकी 500 योजन उसका विष्कम्भ है, और उच्छेद यानी हाइट उसकी 250 यानी 250 योजन है उस जीव के। और वो कहाँ पर स्थित है, तो स्वयंभू रमण समुद्र के बाहरी तट पर। बाहरी तट यानी समुद्र, और उसके बाद थोड़ी जमीन होगी और उसके बाद वातवलय होते हैं, तो वहां पर स्थित है। और वो भी कहां, तो कहते वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा में यानी ऐसा अगर हम गोल राउंड करते हैं जैसे हमारे भारत के वायव्य दिशा में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो वायव्य दिशा। तो त्रसनाली ऐसी चौकोर है, उसमें आखिर का स्वयं रमण समुद्र ऐसा है, और ये महामत्स्य यहाँ पड़ा है 1000 योजन लंबाई वाला ऐसा दक्षिणोत्तर पड़ा है। अब वो मरण यानी वो भी किसी देव ने उसको पटक दिया, वहां पर पटकने के कारण वो वेदना से तड़फड़ रहा है। तो वेदना इसलिए लिया कि उसके जो अवगाहना तिगुना हो जाती है, लंबाई वाइज 1000 योजन में बढ़ोतरी नहीं होगी, और वो 1000 योजन में वो मारणांतिक करेगा उसी लाइन में, तो 1000 योजन तो बढ़ेगी नहीं, तो परंतु 500 और 250 वो तिगुना तिगुना हो जाएगी। तो उतनी अवगाहना सहित अभी वो मारणांतिक करेगा सातवें नरक में। तो ये वायव्य में ईस्ट कोने पर था, तो कहते ये आधे से भी ज्यादा इधर आ गया दक्षिण की ओर, और फिर यहाँ पूर्व की ओर गया, यानी करीबन ये एक राजू पूर्व में गया। अब पूर्व में जाने पर अभी वो नीचे 6 राजू गया सातवें नरक में। प्रश्न ये भी पूछा गया था उसका, तो श्रेणीबद्ध जो है तो ये इतने दूर तक होते हैं, तो कहते हाँ, यानी जो एकदम आउटर भूमि के लगते हुए वो श्रेणीबद्ध की सीमा वहां तक है, तो वहां जाकर वो उत्पन्न हुआ। दो मोड़ हो गए ना उसके, यहां तक गया, यहां से एक मोड़ लेकर यहां गया और वहां से नीचे गया, तो ये आधे से ज्यादा। फिर एक राजू और नीचे छह राजू, तो छह एक सात और ये आधा साढ़े सात, थोड़ा ज्यादा अधिक साढ़े सात राजू, ये उसके एक लंबा फैला हुआ है और उसकी जो एरिया जो है वो तिगुनी हो गई है। ऐसा जो जीव है मरण के समय में उसकी जो ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदना है, ये हमने पढ़ा था। देखो अभी हम आपको बताते हैं, 15 नंबर से ये बात 14 नंबर से शुरू हुई थी, 7 नंबर के सूत्र में पूछा गया था, पेज नंबर 14 सूत्र नंबर 7 के स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में ज्ञानावरणीय वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है। यानी यहाँ तो उत्कृष्ट अवगाहना वाला जीव लेना है, तो उत्कृष्ट अवगाहना वाला केवली समुद्घात ले सकते हैं क्या हम ज्ञानावरण में? हाँ मयंक भाई, नहीं लेते, क्योंकि वो तो ज्ञानावरण का वहाँ है ही नहीं, सकता ही नहीं, इसलिए वो मत्स्य लिया। वो 15 नंबर पेज पर 8 नंबर के सूत्र में बताया, जो मत्स्य 1000 योजन के अवगाहना वाला स्वयं भ्रमण समुद्र के बाह्य तट पर स्थित है। फिर आना अभी पेज नंबर आगे 18 पर 9वें सूत्र में कहते हैं, वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ है। वेदना समुद्घात में वो तो मैक्सिमम एरिया उसकी कवर करने, इसलिए तिगुना लेना है। अब 19 पेज पर, जो तनुवात वलय से स्पृष्ट है, तनुवात वलय से स्पृष्ट है कहने से ये आउटर साइड तक वो घिरा है, उसकी चर्चा भी हुई थी तभी। उसके बाद पेज नंबर 20 पर 12 नंबर का ऊपर जो है 11, फिर भी जो तीन विग्रह करके, विग्रह करके यानी विग्रह कांडक करके यानी दो मोड़ और तीन वो दंड होते हैं उसके, मानांतिक समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त हुआ है। अब 12 नंबर का सूत्र, अनंतर समय में वह सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न होगा, होगा कहकर वो वहां तक उसने मारणांतिक किया है ये बात बता रहे, और ये पूरा ही फैला हुआ है वहां तक, क्योंकि मारणांतिक पूरे के पूरे वहां तक फैला ही फैले जाए ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है मारणांतिक समुद्र एक दंड तक हो जाए, हो सकता है एक प्रदेश भी बाहर निकसे, हो सकता है एक फुट इतना ही बाहर निकसे, पूरा वहां तक फैलना जरूरी नहीं है, पर यह ऐसा जीव लिया तो वहां तक फैला हुआ जीव लिया, अतः उसके ज्ञानावरणीय वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। अभी आना है अभी पेज नंबर पर 23 पर, जिसके ये उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट होती है बताया। महामत्स्य के उपर्युक्त तो उत्कृष्ट क्षेत्र से भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है। अभी अनुत्कृष्ट वेदना यानी एक एक प्रदेश से हीन कैसे हो सकती है? तो उसकी लंबाई वाइज 1000 योजन जो लंबाई थी उसमें एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम, इस तरह से उसके प्रदेश कम किए। बाद में ऐसी ही अवगाहना किसको हो सकती है कि वो नरक के वहां तक नहीं फैला है, एक प्रदेश कम तक फैला है, दो प्रदेश कम तक फैला है, इस तरह से दोनों की समानता बताते बताते बहुत सारे विकल्प उन्होंने बता दिए। अब यहां हम 25 पेज पर आते हैं। यहाँ पहली प्रश्न शंका फिर दोबारा पढ़ लेते हैं ऊपर से, चौथी लाइन 25 नंबर के पृष्ठ पर चौथी लाइन के सातवीं पृथ्वी में, वो प्रूव बराबर करना, मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सब जीवों के मारणांतिक क्षेत्रों का आयाम समान क्यों नहीं होता? क्योंकि सबका समान होना चाहिए, ये प्रश्न था। अभी तक हमने पहले रिवीजन ही की है, 25 पेज पर आते हैं, क्योंकि आज मंदा बेन भी नए हैं 11वें पुस्तक के लिए, मयंक भाई भी गए नए हैं, ब्रह्मा भी आ गया आज, चलो अच्छा हुआ। 10वीं पुस्तक में हमने वेदना का द्रव्य देखा था, नंबर ऑफ परमाणु, अभी यहाँ क्षेत्र देख रहे हैं, क्षेत्र कर्म का क्षेत्र कितना होगा? जितने जीव की अवगाहना होगी, इसलिए यहाँ पहले पद पूछे थे, उत्कृष्ट होता है, अनुत्कृष्ट होता है, जघन्य होता है, अजघन्य वगैरह वगैरह पदों की चर्चा की। अब उसी में पूछ रहे कि उत्कृष्ट किसके होता है, तो ये महामत्स्य लेना जो सातवें नरक में मारणांतिक कर रहा है, और उसकी अवगाहना बढ़ाने के लिए वेदना समुद्घात करके वारणांतिक किया है। वेदना समुद्घात में तिगुणी हो जाती है, यानी 500 को तिगुणा करना, 250 योजन को भी तिगुणा करना। और फिर वो जो वायव्य कोने से दक्षिण की ओर आया, फिर एक राजू पूर्व की ओर गया, फिर 6 राजू नीचे गया, ऐसा जीव लिया है। तो उसमें ये तो उत्कृष्ट के बाद कहते हैं, अनुत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं? तो उसकी 1000 योजन में एक एक प्रदेश कम करते जाओ और उसकी अवगाहना के अलग अलग विकल्प बताए। दूसरी पद्धति से वो मारणांतिक वहां तक नहीं लेना जहां जन्म लेना है नरक में, एक प्रदेश कम तक मारणांतिक किया, 2 प्रदेश कम तक किया, 3 प्रदेश कम तक किया, इस तरह से दोनों ओर से उसके सेम डायमेंशन आ सकती है। या तो इसकी अवगाहना कम करो या वहां मारणांतिक छोटा करो। इसीलिए प्रश्न यहाँ 25 पेज पर पूछ रहे हैं। आज का विषय यहाँ से शुरू होता है कि सातवीं पृथ्वी में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सब जीवों के मारणांतिक क्षेत्रों का आयाम समान क्यों नहीं होता, ये प्रश्न पूछा गया था। समाधान, नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात को करके फिर मूल शरीर में प्रवेश कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवन संबंधी मारणा क्षेत्रों के आयामों के अनेक विकल्प रूप होने में कोई विरोध नहीं है। एक तो वहां तक फैले है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक मोड़ तक फैले, 2 मोड़ तक फैले, हो सकता है केवल 1 फुट फैले, हो सकता है एक प्रदेश ही फैला, ये भी हो सकता है। इतने जुदे जुदे विकल्प हो सकते हैं। अभी यहाँ ये बात सिद्ध होती है, जैसे पहले हमने देखा था उपपाद दंड के लिए फैले हुए फिर मूल शरीर से उच्चाटन होता है। अभी यहाँ दूसरी पद्धति से बता रहे, यानी दोनों ही हमें धवला में ही हमको प्रूफ मिले। पहले हमको वो प्रूफ मिला था कि मूल शरीर से प्रदेश उठते हैं। अब यहाँ जो ये प्रूफ मिल रहा है कि क्योंकि वो क्षेत्र संबंधी था जो चौथी पुस्तक में हमने पढ़ा था, अब यहाँ जो बात हो रही है ये भी क्षेत्र की बात है, परंतु यहाँ ये सिद्ध करे कि मारणांतिक करके समेट के मूल शरीर में आए और फिर फैले। तो फैलेंगे तो पूरे 3 दंड तक एक साथ नहीं फैलेंगे, अभी पहले मोड़ तक फैलेंगे, फिर दूसरे मोड़ तक फैलेंगे, फिर तीसरे मोड़ तक फैलेंगे, वहां तक समेटे। अभी जाएंगे, अभी नहीं, 1 फुट 2 फुट, अभी तो एक समय में एक मोड़ तक जाएंगे ही जाएंगे, यानी अभी यहाँ मरण हुआ है। परंतु यह क्या कहते, देखो फिर मूल शरीर में प्रवेश करके, तो मूल शरीर में प्रवेश करते उल्टा लेने, अभी वहां तक फैला हुआ है, अब मूल शरीर में प्रवेश करते समय भी दूसरे मोड़ तक पहले आएंगे, यानी दो ही उसके विग्रह के कांडक है, फिर पहले मोड़ तक उल्टा आया, फिर पहले मोड़ तक ही फैला हुआ है, अभी फिर मूल शरीर में आया। क्योंकि मारणांतिक की एरिया लेना, मरने के बाद नारकी की लेना नहीं है हमको, मारणांतिक की एरिया लेना है, मारणांतिक समुद्घात को कर रहे हैं, यानी वो फैले है और समेटते समेटते फिर पीछे आया है, तो पीछे आते आते उसके अनेक विकल्प हो सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। अभी शंका, दूसरी शंका पूछ रहे, उत्पत्ति क्षेत्र को न पाकर, यानी उत्पत्ति के क्षेत्र तक नहीं फैले है वो मारणांतिक समुद्घात को करने वाले जीव, पलटकर मूल शरीर में प्रविष्ट होते यह कैसे जाना जाता है, यानी पलटने वाले कौन है, वो जहां तक नहीं फैले है वो मूल शरीर में प्रवेश करेंगे, यानी इससे ये भी सिद्ध हो जाता है वहां तक नहीं फैले है, थोड़े ही फैले है तो मूल शरीर में प्रवेश करके फिर चले जाएंगे। समाधान, यह परंपरागत उपदेश से जाना जाता है, यानी इसमें 2 मत है, ऐसे भी बात नहीं है, वहां तक फैले है तो मूल शरीर से उठेंगे और थोड़ा ही किया है तो वापस आके फिर जाएंगे। फिर शंका, सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों का आश्रय करके स्वामित्व की प्ररूपना क्यों नहीं की जाती? आज अश्विन भाई ने ये उनका प्रश्न था कि किसी कोने में उसको उत्पन्न करा ना, महामत्स्य है तो सूक्ष्म निगोद में उत्पन्न तो हो सकता है, तो 7वें नरक के लिए 6 राजू ही नीचे लाया है, अब और 7 राज्यों तक नीचे चले जाओ और फिर और दक्षिण उत्तर और भी फैला उसको, ये हो सकता है, तो उसमें वहां क्यों नहीं उत्पन्न किया, उनका प्रश्न है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि तीव्र वेदना व कषाय से रहित होने के कारण एक साथ पूर्वोक्त महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र की अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र प्रदेशों से हीन उक्त निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों में सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के मैं फिर एक एक पार्ट बताऊंगी। उत्कृष्ट क्षेत्र से एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्र विकल्प नहीं पाए जाते। यानी एक दो प्रदेशों का डिफरेंस नहीं, बहुत डिफरेंस है उसमें, क्यों वो भी देखते हैं। पहले ये कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म निगोद में मारणांतिक कर रहे हैं उसके इतने संकलेश नहीं है और इतनी वेदना नहीं, तो इतने संकलेश भी नहीं है। क्यों? आप स्थितिबंध की बात अगर आपको याद होगी तो जो हमने महाबंध में पढ़ा था, तीर्यंच अगर उत्कृष्ट संकलेश में मरता है तो नरक में जाता है। यानी उस समय उसके हमने देखे थे नरक गति का बंध करना है उसको तो बीसकोड़ा कोड़ी सागर का होगा, परंतु अगर वो सूक्ष्म में उत्पन्न होता है तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंध करता है। यानी सूक्ष्म में मैक्सिमम बंध 18 कोड़ा कोड़ी का है। यानी वो एकेंद्रीय तीर्यंच या मनुष्य एकेंद्रीय में जाते हैं तो वो तीर्यंच गति में जा रहे हैं। अति संकलेश में मरकर तीर्यंच में नहीं जाएंगे मनुष्य तीर्यंच। देव अति संकलेश में मरकर बादर एकेंद्रीय में उत्पन्न हो सकता है, उसके 18-20 कोड़ा कोड़ी का बंध वो वहां कर सकता है एकेंद्रीय जाति का। पर मनुष्य तीर्यंच एकेंद्रीय में उत्पन्न होते हुए इतने तीव्र संकलेश वाले नहीं है। नहीं, मुझे फिर याद आया महाबंध में हमने ये बातें देखी थी, उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना हो सकता है अलग अलग प्रकृतियों का, क्योंकि सूक्ष्म में तो देव उत्पन्न नहीं होते हैं, मनुष्य तीर्यंच उत्पन्न हो गए और वो तो 18 कोड़ा कोड़ी का ही बंद करते हैं। उतने संकलेश ज्यादा नहीं है उस समय उनके, अति तीव्र संकलेश में वो नरक में जाएंगे और थोड़े कंपैरेटिवली कम संकलेश में सूक्ष्म में जाएंगे। तो उस समय उनकी वेदना, यानी संकलेश कहने से वेदना समुद्रात कषाय समुद्रात में संकलेश से रिलेटेड है, इसलिए वहां उसके इतने संकलेश नहीं है, तो इतना तिगुना फैलेंगे नहीं, एक बात ये, यानी ऐसी एरिया उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तिगुना 9 गुना का डिफरेंस हो जाता है, केवल 3 गुना का नहीं, वेदना का हो सकता है पर इतना इतना ज्यादा नहीं होगा, 3 गुना 3 9 गुना का डिफरेंस पड़ता है उसमें। यानी ऐसे 7.5 राज्य है और ऐसा उसको इंटू 9 गुना उसके एरिया लेना है। अब सूक्ष्म में जाने वाले इतनी तो बढ़ी गई नहीं, वो 9 गुना हुआ है, 2 गुना भी अगर करते 2 गुने 2 4 गुना हो जाएगा, वो 9 गुना बहुत सारा फर्क पड़ता है। यानी वो एक थोड़ा सा एरिया लेंथ वाइज बढ़ाएंगे तो भी एरिया बढ़ेगी नहीं, ये कहना चाहते हैं। फिर अभी इस वाक्य को फिर दोबारा पढ़ते। हाँ,
देवगति का जीव
हाँ
मरकर निगोद में जा सकता है?
नहीं नहीं, मैंने एकेंद्रीय में बताया था।
बराबर है, मेरे को डाउट था इसलिए।
नहीं नहीं नहीं, देव जो है सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण का बंध ही नहीं कर सकते, एकेंद्रीय में जाते वो भी बादर में और पर्याप्त में जाते हैं, वो भी अग्निवायु छोड़कर। हाँ, बादर जल का एक प्रत्येक शरीर में, सर बादर जल का एक में, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर में और तीसरा कौन सा लिया, बादर पृथ्वी का एक में पर्याप्तों में जाएंगे, अग्नि में वायु में नहीं जाएंगे और जिसमें जाते हैं उसके सूक्ष्म में नहीं जाएंगे, अपर्याप्तों में नहीं जाएंगे और साधारण में तो नहीं जाते, निगोद में भी नहीं जाएंगे। अभी फिर पढ़ते हैं, ये महामत्स्य की बात चल रही है, समाधान दोबारा पढ़ती हूँ। तीव्र वेदना व कषाय से रहित होने के कारण, यानी अति संकलेश नहीं है वहां पर, यानी अति संकलेश में मरकर नरक जाता है, हमने ये भी देखा था। एक साथ पूर्वोक्त महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक की अपेक्षा, एक साथ है ना, वेदना समुदायत और मारणांतिक समुदायत एक साथ किए ना, उसकी अपेक्षा अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र प्रदेशों से हीन उक्त निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों में अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र प्रदेशहीन कैसे हुए, क्योंकि उसके ज्यादा संकलेश नहीं है, तो तिगुना एरिया, तीन गुना नहीं बढ़ी है उसकी एरिया, इसलिए उसका डिफरेंस बहुत सारा हो जाता है अनेक राजु प्रमाण क्षेत्र प्रदेशों से ही। तीन इंटू तीन गुना वेदना समुद्घात नहीं होता, क्योंकि उसके संकलेश कम है। उक्त निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों में सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट क्षेत्र से, अभी ये दोनों का क्षेत्र अगर कंपेयर करेंगे तो एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इत्यादि क्षेत्र विकल्प नहीं पाए जाते, यानी वो दो चार प्रदेशों का डिफरेंस नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस है, इतनी बात बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र के समान सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के मारणांतिक क्षेत्र को आदि लेकर अधस्तन क्षेत्र के विकल्पों को सूक्ष्म निगोद जीवों में और सातवीं पृथ्वी में भी, अभी लास्ट लाइन पढ़ना, उत्पन्न होने वाले, क्योंकि ये रिपीट हुआ है वाक्य है कि यहाँ पर ब्रह्मा नीचे से दूसरी लाइन पूरी की पूरी लास्ट तक रिपीट हुई है, आप में क्या है रिपीट हुए। अच्छा, अभी यहाँ क्या कहते हैं वो निगो, पहले में पहले हमने एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम, ये या तो मारणांतिक कम किया ऐसा ले लो, या उसके हजार योजन में से एक एक प्रदेश कम करो, ऐसे घटाते घटाते वहां तक आएगी कि वैसा ही इतना ही क्षेत्र सूक्ष्म में उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा हो सकता है। यहाँ तो क्षेत्र की समानता लेनी है, वो तो हमने क्षेत्र अनुत्कृष्ट के विकल्प देख रहे हैं, हम अनुत्कृष्ट होते 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 अभी वो इतना अनुत्कृष्ट हुआ कि सातवें नरक में उत्पन्न होने वाले का क्षेत्र और सूक्ष्म निगोद में उत्पन्न होने का क्षेत्र समान हो गया। अब उसमें एक एक प्रदेश घटाते जाओ दोनों की अपेक्षा से, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में, तो कहीं पर भी उसको उत्पन्न कराते कराते हम उसकी अवगाहना उतनी कम कर सकते हैं। तो दोनों की समानता लेते हुए फिर एक एक प्रदेश घटाओ, फिर ये वाक्य पढ़ते देखो। सूक्ष्म निगोद जीवों में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के उत्कृष्ट मारणांतिक क्षेत्र के समान, ये सूक्ष्म में जो उत्कृष्ट हो सकता है उसके समान सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले महामत्स्य के मारणांतिक क्षेत्र को आदि लेकर, क्योंकि हम अनुत्कृष्ट देखते देखते वहां तक पहुंचे थे, अब वहां से और घटाना है, वहां से लेकर अधस्तन क्षेत्र के विकल्पों को, यानी एक एक प्रदेश से कम क्षेत्र को सूक्ष्म निगोद जीवों में भी घटित कर सकते हैं और सातवीं पृथ्वी में भी उत्पन्न होने वाले महामत्स्यों का आश्रय करके उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म निगोद में भी भेजो या अब सातवें में, उनका एक एक प्रदेश से कम हम सोच सकते हैं उसके अनुसार। अथवा अब 26 पेज पर आना, महामत्स्य को ही एक को आदि लेकर या वो निगोद की बात छोड़कर इसी को एक एक प्रदेश कम करते हुए हम सोच सकते हैं, एक अधिक आकाश प्रदेश के क्रम से आगे बढ़ाकर अनुत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपना करना चाहिए। वो क्या कहना चाहते हैं, यानी या तो निगोद में भी वैसा ही घटित कर सकते हैं, या निगोद की बात छोड़ दो, सातवें नरक में जाने वाले की अपेक्षा एक एक प्रदेश घटाते 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 हम अनुत्कृष्ट क्षेत्र सोच सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, उसको ला सकते हैं। इस प्रकार वेदना समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त महामत्स्य के क्षेत्र तक ले जाना चाहिए। अब शंका, इस क्षेत्र से कौन से महामत्स्य का क्षेत्र सदृश होता है, यानी वो क्या किया है, अभी उसका जो मारणांतिक का क्षेत्र घटाते गए हैं, ये जरूरी नहीं कि वहां तक मारणांतिक करें, मारणांतिक घटाते 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 उसको बहुत कम कर दिया, तो वैसा और कौन से जीव को हो सकता है, ये पूछा उन्होंने। तो वो उसके उत्तर में जवाब देते हैं, इस शंका का उत्तर कहते हुए इस प्रकार, जो महामत्स्य वेदना सबुद्घात के बिना मूल आयाम के साथ 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को करता है, उसका क्षेत्र इस क्षेत्र के सदृश है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, वो वेदना समुद्घात में उसने 9 गुना किया था, यानी वेदना समुद्घात में 9 गुना किया था। अब उसके बदले यहाँ या कौन सा लिया, वेदना समुद्घात नहीं किया, और यहाँ 1000 के बदले 9000 योजन तक उसने मारणांतिक किया। समझ में आती है, पहले कौन सा लिया, वो मारणांतिक बिल्कुल वहां तक 7वें नरक तक, फिर वहां से घटाते 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 इतना घटाया उन्होंने कि बिना वेदना के जो मारणांतिक करेगा उतना हो जाएगा। अब बिना वेदना के मारणांतिक किया, परंतु यहां लेना है कि बिना वेदना के कितना किया, बिना वेदना के 9000 योजन किया, या मारणांतिक समुद्घात नहीं किया, उसने केवल वेदना समुद्घात किया तो 9 गुना हुआ, दोनों का समान है। समझ में आते ना क्या बात, वेदना में क्या होता है 3×3 9 गुना हो जाता है, समान है। देखो देखो, हाँ केवल वेदना समुद्घात की तो 9 गुना हो गया, और वेदना नहीं की मारणांतिक की अपन कितना 9000 योजन, क्योंकि 1000 को 9 गुना किया, वहाँ 500×250 को 9 गुना किया था, अब यहाँ 500×250 तो रखना ही रखना है, भीड़ तो उतनी रहेगी, परंतु 1000 उसने मारणांतिक लंबा नहीं किया था, इसको 9000 योजन तक उसने मारणांतिक किया।
कंपैरिजन दो समुद्घात में
है, एरिया में, एरिया में, नहीं ये प्रश्न पूछा था क्षेत्र से कौन से महामत्स्य क्षेत्र सदृश होता है, उसमें उत्तर में क्या दिया था, जो महामच्छो वेजन समुघादेन विना मूल आयामेन सह नवयोजन सहस्राणि मारणंत्यम मेल्लिदि तस्य खेत्तम सरिसम होदि। मैंने पहले क्या किया था, मारणांतिक नहीं किया था, केवल वेदना किया था, तो वेदना समुद्घात में 9 गुना हुआ था, अब यहाँ वेदना समुद्घात नहीं किया परंतु लंबाई 9 गुना बढ़ाए, मारणांतिक किया नहीं था पहले, केवल वेदना किया था, यानी पहले वाला महामत्स्य केवल वेदना समुद्घात वाला था, अब दूसरा वाला बिना वेदना के 9000 योजन उसने मारणांतिक किया, यानी मात्र वेदना करने वाला, वेदना समुद्घात वाला 9 गुना होता है। और यहाँ बिना वेदना के 1000 को 9 गुना किया, 9000 योजन गया मारणांतिक किया। इसलिए दोनों समान है, उसका क्षेत्र इस क्षेत्र के सदृश है। अब यानी वो अनुत्कृष्ट के अलग अलग विकल्प हमको घटित करके दिखा रहे हैं, पूर्व के क्षेत्र को छोड़कर वह इसे ग्रहण कर स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, वह इस प्रकार है, मुख में एक आकाश प्रदेश से हीन होकर 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को करने वाले, यानी बिना वेदना के महामत्स्य का अनंतर अधस्तन अनुत्कृष्ट मानांति क्षेत्र होता है। अरे अभी हमको एक प्रदेश कम तक, या तो 9000 योजन में एक प्रदेश कम भेजो, या यहाँ मूल में उसकी 1000 योजन जो अवघाना इन्हें लंबाई थी उसमें एक प्रदेश कम वाला जीव लिया और 9000 योजन उसने मारणांतिक किया, बात वही की वही होगी। यानी एक प्रदेश से ही उसका क्षेत्र घटित हो गया। इस प्रकार एक एक आकाश प्रदेश को मुख में कम करके 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को कराकर संख्यात प्रतरांगुल मात्र क्षेत्रों के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। देखो एक एक प्रदेश कम करते 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 अभी प्रतरांगुल कितना हो जाएगा, और वो भी संख्यात प्रतरांगुल, इतने कम होने तक उसको कम करते चले जाओ, क्योंकि 1000 योजन में से संख्यात प्रतरांगुल कम, यानी लेंथ वाइज वो कम है महामत से, ऐसा लिया, और वहां उसके डायमेंशन 500 और 250 उतने ही रखे हैं, केवल 1000 योजन की लंबाई उसकी घटाई थोड़ी। इस प्रकार हीन होकर स्थित अंतिम क्षेत्र से ओघोक्त उत्कृष्ट अवगाहना में, यानी ओघ में बताई जो उत्कृष्ट अवगाहना थी उसमें एक प्रदेश कम 9000 योजन मारणांतिक समुद्घात को करने वाले महामत्स्य का क्षेत्र सदृश होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहां 1000 योजन में उसके एक एक प्रदेश कम कर दिया, तो कहते कि वहां पर भी एक एक प्रदेश कम करो ना, वो भी सेम होना चाहिए, तो कहते ऐसा नहीं होता। क्योंकि 500 गुना जो 250 है वो चौड़ाई, वो तो उतनी रही ना उसकी। देखो क्या कहना चाहते हैं, हम देख रहे किसी की लेंथ इतनी है और उसने मारणांतिक किया उतना इतना, तो ये उसका क्षेत्र बढ़ा। अब ये उसकी मुख ऐसा लिया उसका, तो उसका एक प्रदेश कम वाला यहाँ लिया, परंतु एक प्रदेश कम करने से ये यहाँ से एक प्रदेश कम करो तो वो समान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विड्थ उसके एक प्रदेश में उतनी नहीं होगी ना, विड्थ तो उतनी की उतनी रही, यहाँ केवल एक प्रदेश लंबाई में कम यहाँ हो सकता है। यहाँ से एक प्रदेश कम करने के लिए वो 250 × 500 वाला वो पूरा का पूरा एरिया कम होना चाहिए। इसलिए यहाँ संख्यात प्रतरांगुल हो सकता है कितने करोड़ों हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये पूरी एरिया वाइज एक प्रदेश कम करना है ना, यानी 250 × 500 इसके जितने अंगुल हो गए उतना कम होने तक यहीं से एक एक प्रदेश कम कर दो, तब जाके ये लेंथ वाइज उसने एक प्रदेश कम मारणांतिक किया उसके समान हो सकता है। केवल यहां से एक कम करो या वहां से एक कम करो सेम नहीं है वो, इसलिए मुख प्रदेश से तो एक प्रदेश कम हो सकता है, क्योंकि मुख जैसे टेपरिंग वाला लिया सो इसलिए उसमें से एक एक प्रदेश कम वाला अनुत्कृष्ट के स्थान ले लिए। अभी आगे देखते हैं, तो एक एक प्रदेश कम करते करते संख्यात प्रतरांगुल कम हुए, तो उसके समान कौन सा जीव है? वो 9000 योजन के बदले एक प्रदेश कम वाली मारणांतिक किया उसने, 9000 योजन तक नहीं फैला है, एक प्रदेश कम तक फैला है। इस प्रकार एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि क्रम से महामत्स्य के अध्वान में उत्कृष्ट अवगाहना तक क्षेत्रों के भी स्वामित्व की प्ररूपणा जानकर कहना चाहिए। यानी यहाँ एक एक प्रदेश यहाँ से घटाओ, अवगाहना बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, यानी उनकी सिमिलैरिटी बतानी, बस इतना ही। पुनः एक प्रदेश कम उत्कृष्ट अवगाहना वाला महामत्स्य उससे अनंतर अधस्तन अनुत्कृष्ट क्षेत्र का स्वामी होता है। यानी पहले हमने केवल एक एक प्रदेश कम करते हुए संख्यात प्रतरांगुल कम किए थे, उसके समान वो मारणांतिक में एक एक प्रदेश घटाया था उसके समान बताया था, और फिर लौट कर वापस पुराने वो जीव पर आते हैं, वो मुख में से और एक एक प्रदेश घटाना उसकी अवगाहना में। इस प्रकार एक एक क्षेत्र प्रदेश को निरंतर कम करके, अभी जो है पंचेंद्रियों, सॉरी इन जीवों में त्रसों में जो कहेंगे या अवगाहना वाइज, ये जो हमने पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना ली थी उसके पहले वाली अवगाहना किसके है, कहते बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। कितनी होती है ये मालूम है? हाँ बोलो ना, हजार योजन का कमल है। हाँ, उसकी विड्थ वाइज वो तो कम है, वो फिर उसकी नाली उसका जो अलग उसका यानी पूरी जो योजनों में निकालते हैं घन रूप वो एरिया कम हो जाती है, यानी वो महामत्स्य को घटाते 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 इतना घटाया कि अभी हम वापस वो वनस्पति का एक ऊपर चले जाना, क्योंकि अवगाहना के भेदों में से अभी उसके पहले वाली अवगाहना यही है। आपको जीवकांड में देखेंगे तो याद आएगा 64 स्थान थे अवगाहना वाले, तो 63 नंबर पर इसका नंबर है। तो बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, फिर उसमें से एक एक प्रदेश कम करके द्विंद्रिय, वो द्विंद्रिय बराबर करना, द्विंद्रिय द्र करना, द्वि हो गया द्वि करना, तो द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। वो शंख है ना 12 योजन वाला, यानी हजार योजन का कमल, पर उसकी टोटल एरिया 750 कुछ घन योजन आती थी, क्योंकि उसमें जो नाली और उसका सब एरिया हमने निकाला था और 12 योजन के भी हमने निकाल के वहाँ जीवकांड के पुस्तक में सब लिखी हुई है। फिर उसमें से निरंतर एक प्रदेश कम, दो प्रदेश कम इत्यादि क्रम से चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। देखो तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय में उल्टा है, अभी हम उल्टे क्रम से आ रहे हैं, पहले पंचेंद्रिय लिया, फिर एक इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना ली, फिर द्विंद्रिय के लिए, फिर चतुरिंद्रिय के लिए, और बाद में तीन इंद्रिय के ले लेंगे। ब्रह्म रहता है, हाँ, द्विंद्रिय में शंख था, एक इंद्रिय में वो कमल था, ये घटाते हमको छोटे 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 अवगाहना वाले हैं, ऐसे उल्टे क्रम से आ रहे हैं। शंख 12 योजन था, पर 12 योजन उसकी सब पूरी जो अगर अवगाहना पूरी निकालनी है तो एरिया पूरी घनफल निकालना पड़ेगा। मुझे जीवकांड देना, मैं अभी बताती हूँ। पहली पुस्तक यहाँ हम लिख सकते हैं ना, वो बीच में जाड़ी पुस्तक है ना, यू लिखे हुए आपको चाहिए तो दूसरी ले लेना, पर मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। हाँ, जो अवगाहना के भेद है ना पर्याप्ति प्ररूपना में, वहाँ ये बात आती है, जीव समास में आता है, पर्याप्ति में जीव समास में। हाँ देखो वो देखो दो लास्ट, हाँ नहीं, स्वयं रमण द्वीप आउटर भाग, आउटर भाग देखो, बारहवा जो कॉलम था ना जीवकांड में लास्ट वाला, उसमें पहले पेज नंबर वो 188 अवगाहना के जो भेद है ना, पेज 188 पर एक टेबल है, उसमें अवगाहना के भेदों में यानी पर्याप्तों के है, वहां पर तीन इंद्रिय का पहला लिया, फिर चतुरिंद्रिय का, फिर द्विंद्रिय का, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक का, फिर पंचेंद्रिय का, हम उल्टे क्रम से जा रहे हैं। अभी इनके अवगाहना में बताती हूँ आपको, पहली बुक क्योंकि पहले दूसरे में पेज नंबर कंटिन्यूएशन में ही है। उत्कृष्ट और जगन्या उगाना के भेद है उसमें। एक मिनट है, उत्कृष्ट किसके होती है, जघन्य किसके होती है, इसे हाँ मिला। ये अभी आपको लिखना है तो उत्कृष्ट के स्वामी इन्हें जाति के एक इंद्रिय द्विंद्रिय इस तरह से उन्होंने लिखा है। 179 पेज है, टेबल 188 पर था। उत्कृष्ट अवगाने के स्वामी एक इंद्रिय से उन्होंने बताया, पेज 179। एक इंद्रियों में वो कमल बताया। देखो मैं यहाँ पढ़ती हूँ 95 गाथा की टीका में। एकेंद्रियों में स्वयंभू रमण द्वीप के मध्यवर्ती जो स्वयं प्रभ नामक पर्वत, उसके परभाग, परभाग यानी आउटर साइड, स्वयं प्रभ पर्वत ऐसे जो मानुषत्र जैसे गोलाकार है वैसे वो स्वयं प्रभ भी है, ऐसे पूरा ही राउंड है। उसके बाहरी ओर यानी स्वयंभू रमण द्वीप के दो भाग हो गए, एक अंदरूनी भाग वो तो तिरियंचों की जघन्य भोगभूमि होगी और बाहरी ओर वो तो कर्मभूमि है। वहां द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय सब एक इंद्रिय द्विंद्रिय सभी जीव वहां पाए जाएंगे और स्वयंभू रमण समुद्र में भी। तो एक इंद्रियों में वहां कर्म भूमि रूप क्षेत्र में उपजा हुआ कमल, उसमें कुछ अधिक 1000 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा ऐसा उत्कृष्ट अवगाह है। अभी उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना वगैरह पूरा विस्तार है, अभी उसमें हमको नहीं जाना है। उसकी एरिया 750 घन योजन आती है। घन योजन क्योंकि उसकी लंबाई उसकी विड्थ और उसकी सब कैलकुलेट करने पर इतने आती है। अब द्विंद्रिय वाला जो है ना, द्विंद्रिय में कम ये लिया, शंख लिया, वो शंख समुद्रवर्ती शंख है, स्वयं भ्रमण समुद्र वाला शंख है वो। शंख को द्वीप पर नहीं लिया। 12 योजन उसकी लंबाई थी और उसका कैलकुलेशन आता है 365 घन योजन, 365 घन योजन घयो। अब तीन्द्रिय का वो तो द्वीप में आता है, रक्त बिच्छू जिसको कहते हैं। इन्होंने क्रम से नहीं, अवगाहना के क्रम से नहीं लिया, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय के क्रम से लिया। यहाँ पहले क्रम से अलग बात आ जाएगी। तो तीन्द्रिय जो है वो है रक्त बिच्छू। हाँ रक्त ने रेड स्कॉर्पियन जिसको कहते हैं ना, शंख की 365 घन योजन, 12 योजन तो लंबाई है, 365 घन योजन यानी 12 योजन लिखना लंबाई और उसके साथ 365 घन योजन लिखना है ब्रैकेट। हाँ 750 है ना, क्योंकि वो 1000 योजन लंबा था परंतु उसकी नाली डंडी वगैरह जो छोटी थी इसलिए वो तो 1000 योजन से भी उसके घन योजन में कम आ गए। अब तीन इंद्रिय की बात है, रक्त बिच्छु की बात है ना, तो उसका तीन चतुर्थांश योजन लंबा था, पर उसके एरिया कैलकुलेट करते हैं सत्ताईस बटे 8192, हाँ घन योजन, अने एक का भी कितना छोटा हिस्सा है ना, क्योंकि 3/4 योजन है उसकी, परंतु उसका आठवें भाग उसकी लंबाई है और चौड़ाई उससे भी आधी होती है। अब चतुरिंद्रिय लेना, ये भ्रमर लेना चतुरिंद्रिय में, हाँ हाँ द्वीप में एक योजन लंबा है, पौन योजन चौड़ा है, केवल लंबाई हम लिख रहे हैं ना, एक योजन तो एक योजन इंटू 3/4 योजन इंटू आधा योजन है एक्चुअली वो, और उसकी पूरी जो होता है तीन अष्टमांश घन योजन आता है। द्विंद्रिय से वो कैसे निकालना उसकी जरूरत नहीं ना, वो डिटेल में जाने की हमको, पंचेंद्रिय के तो अभी हमने देखा था 1000 × 500 × 250 12.5 करोड़ घन योजन हो जाता है, वो तो हमने पहले महामत्स्य में देखा ही था। अभी हम पढ़ेंगे तीन इंद्रिय की, पढ़ रहे थे पेज नंबर 27 पर, पहले पैराग्राफ नीचे से चौथी लाइन, तीन्द्रिय निवृत्ति पर्याप्तक के अजघन्य अनुत्कृष्ट एक घनांगुल मात्रा उगाहना के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। अभी उसकी अनुत्कृष्ट यो लिया, उत्कृष्ट उगाहना नहीं ली, उत्कृष्ट कितनी थी उसकी 27/8192 घन योजन है, अभी अंगुलों में बता रहे हैं, उसकी अनुत्कृष्ट जो अवगाहना है, पर्याप्तों की अनुत्कृष्ट अवगाहना जो है, अजघन्य और अनुत्कृष्ट, जघन्य भी नहीं ली, इन बिटवीन कोई मिडिल वाली ली है, वो कौन सी ली उन्होंने, एक घनांगुल वाली, यानी एक घनांगुल अवगाहना तक ले गए हैं। यानी ये सगे संख्यात घन योजन से लेकर अभी घनांगुल तक आ गए, एक घनांगुल तक। इस प्रकार निरंतर क्रम से एक एक प्रदेश हीन करके, वो होन हो गया हीन करके, सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त की जघन्य अवगाहना प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। ये केवल उसके अवगाहना के ही भेद ले लिए उन्होंने, पहले तो समुद्घात सहित अवगाहना ली, फिर बाद में केवल अवगाहना 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 के भेद लिए। इस प्रकार असंख्यात श्रेणी मात्र, कितने अवगाहना के भेद होते हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र, अनुत्कृष्ट क्षेत्र संबंधी विकल्पों के स्वामित्व की प्ररूपणा की गई है। यानी ऐसे अवगाहना के भेद इतने 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 ले लिए, एक 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 प्रदेश से घटाते 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 वहां तक। समझ में है ना क्या कहना चाहता, हाँ जगत श्रेणी ने सात राज्य एक राज्य सॉरी सात राज्य सात राज्यों को हाँ ऐसे असंख्य श्रेणी इतने उसके विकल्प हुए यानी कितने अधिक विकल्प हो गए उसके क्योंकि एक एक प्रदेश से डिफरेंस है और वो पूरा ही हमने देखा था ना साढ़े सात राज्यों से भी ज्यादा वाला वो उत्कृष्ट जो अवगाहना और उसके हमने इतने गुणा किया था उसकी महामत्स्य की अवगाहना की उसमें से एक एक प्रदेश कम करते 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 निगोद तक आ गए तो ये असंख्यात जगत श्रेणी मात्र अनुत्कृष्ट क्षेत्र संबंधी विकल्प हो गए उसके उत्कृष्ट का एक विकल्प और अनुत्कृष्ट के इतने विकल्प अब इन क्षेत्र विकल्पों के जो स्वामी है उनकी प्ररूपणा करते समय वहां छह अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है क्षेत्र विकल्प यानी इतने इतने डिफरेंसेस इतने इतने स्थान हो गए अब उसमें ये छह और अधिकार हो गए अनुयोग द्वारा ने उसमें छह प्रकार से उसका और वर्णन आएगा एक तो प्ररूपणा फिर प्रमाण श्रेणी अवहार श्रेणी ने वो पंक्ति रूप बात होती अवहार ने उसका प्रमाण लाने के लिए जो भागहार होता है भागा भाग और अल्पभूतव है यहां फुल स्टॉप देना उनमें प्ररूपणा अनुयोग द्वार को कहते हैं वह इस प्रकार है प्ररूपणा बस ये है इतना ही बताना है तो प्ररूपणा में क्या कहेंगे उत्कृष्ट स्थान में जीव है इस प्रकार जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिए प्ररूपणा समाप्त होगी यानी इतने जो असंख्यात श्रेणी प्रमाण जो विकल्प बताए हैं उसमें जीव है बस इतनी बात बताएंगे अब कहते पूछते हैं उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं तो कहते वे वहां असंख्यात है इस प्रकार त्रसकायकों के योग्य क्षेत्र विकल्पों में असंख्यात जीव है ऐसा कहना चाहिए क्या कहना चाहते हैं देखो यानी एट ए टाइम असंख्यात जीव है यानी एट ए टाइम की बात है कभी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम जीव कितने होते हैं तो हमने देखा था कि वो तो सातवें नरक में एट ए टाइम एक समय में उत्पन्न होने वाले जीव भी आवली के असंख्यात भाग प्रमाण उत्पन्न हो सकते हैं तो असंख्यात है बस इतनी बात है उत्कृष्ट क्षेत्र वाले स्वामी कितने हैं तो कहते असंख्यात है हर समय असंख्यात होना चाहिए उसका अर्थ नहीं है एक भी हो सकता है कभी नहीं भी हो ये भी हो सकता है परंतु मैक्सिमम पॉसिबल कहने की पद्धति है तो इसे त्रसकायिकों के योग्य जो क्षेत्र विकल्प है तो त्रस मर त्रस टोटल त्रस ही असंख्यात है तो उनमें ये सारे जो जीव कितने हैं तो कहते हैं असंख्यात है जो नीचे का हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे फिर से पढ़ते उत्कृष्ट स्थान में जीव कितने हैं वे वहां असंख्यात है इस प्रकार त्रसकायिकों के योग्य क्षेत्र विकल्पों में असंख्यात जीव है ऐसा कहना चाहिए अब स्थावर कायिकों के योग्य क्षेत्र विकल्पों में भी असंख्यात लोक प्रमाण जीव है क्योंकि हमने देखा ना स्थावर कायिक कहने से क्या होता है पृथ्वी कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक जल कायिक उसमें तो असंख्यात लोक प्रमाण जीव है मरने वाले भी होंगे और विशेष अभी उसमें तो बाकी तो उनकी अपनी अपनी अवगाहना लिए ना वहां तो मारणांतिक की भी बात नहीं थी अपनी अपनी अवगाहना की बात थी यानी अभी हमने जो मारणांतिक के बाद लौटते 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 हमने जीवों की अवगाहना के विकल्प केवल देखे थे तो उसमें तो मरने वाले जीवों की बात नहीं है तो वहां दूर मारणांतिक में तो मरने वाले ले सकते परंतु त्रसकायिकों के जो अपनी अवगाहना है उसमें तो असंग इतने जीव होते ही होते हैं अब स्थावर कायिकों में भी वायु कायिक कितने तो असंख्यात लोक है जल कायिक कितने तो असंख्यात लोक प्रमाण है अग्नि कायिक कितने हैं फिर पृथ्वी कायिक कितने तो असंख्यात लोक है वनस्पति कायिक कितने हैं पूछेंगे तो क्या होगा अनंत जीव है ये कह रहे विशेष इतना है कि वनस्पति कायिक योग्य क्षेत्र विकल्पों में अनंत जीव है इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई यानी वो अवगाहना के भेद है हमें उसको जीवों की संख्या लेनी उसमें से समझ में आते ना यहाँ क्या कहना चाहते। स्थावर कायिक में चार स्थावर कायिक लेना, हाँ जल कायिक है, वायु कायिक है, पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक है, अपने अपने वो असंख्यात लोक होते हैं और वनस्पति कायिक में अनंत होते हैं। अब कहते श्रेणी और अवहार की प्ररूपणा नहीं की जा सकती क्योंकि उनका उपदेश प्राप्त नहीं है। विशेष इतना है कि एकेंद्रीय जीवों में जघन्य स्थान संबंधी जीवों की अपेक्षा, जघन्य स्थान सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, द्वितीय स्थान संबंधी जीव अंतर्मूर्त प्रतिभाग से विशेष अधिक अथवा विशेषहीन है। यानी वो जीवों की संख्या कितनी है तो अंतर्मुख अंतर्मूर्त यानी असंख्यात, तो जो अनंत को असंख्यात से भाग दे के जो संख्या आती है उतने अधिक या उतने हीन उसमें, दूसरे स्थान यानी वो एक प्रदेश अधिक वाले अवगाहना वाले। अब कहते उत्कृष्ट स्थान के जीव सब स्थान संबंधी जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है। अब कहते यह है भागा भाग। पहले तो उन्होंने बताया अवहार, अवहार तो नहीं हो सकता, परंतु एकेंद्रीय जीवों में अवहार हो गया कि पहले से दूसरे संबंधी जीवों के कितने होते तो विशेष अधिक या विशेषहीन। अब यहाँ कहते उत्कृष्ट स्थान के जीव सब स्थान संबंधी जीवों के कितने भाग प्रमाण है, इसको कहते भागा भाग। उन्होंने अलग अलग अनियोग द्वार बताए ना, उसकी बात चल रही है। कहते वे उसके अनंत वे भाग प्रमाण है क्योंकि उत्कृष्ट स्थान वाले हमने देखे ना तो उपंचेंद्रिय के जो जलचर जो बताया था, तो और टोटल जीव कितने होते तो अनंत होते हैं, तो अनंत आवाज हल
उसके बारे में कोई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ हेलो हेलो
हाँ यहाँ क्या कहते हैं देखो, पेज नंबर अभी क्या है मेरा, हाँ 28 पेज पर आए। भागा भाग की बात चल रही थी अपनी, सेकंड लाइन ना फिर पढ़ती हूँ। उत्कृष्ट स्थान के जीव सब स्थान संबंधी जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, वे उसके अनंत वे भाग प्रमाण है। अब जघन्य स्थान में जीव सब स्थानों संबंधी जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो क्या डिफरेंस हुआ, वो है अनंत, जघन्य स्थान में है अनंत, परंतु वो निगोद के अवगाहना के भी असंख्यात भेद है उनमें। सारों में तो निगोद जीव तो हो गए, वो तो अनंत 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 हो गए ना, वो सभी भिन्न यानी अवगाहना के जो भेद जघन्य निगोद जो लब्धि अपर्याप्त है, सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से लेकर बादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना तक एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए असंख्यात विकल्प है और उन सभी विकल्पों में अनंत जीव है। तो जघन्य अवगाहना जघन्य स्थान में कितने जीव हो गए, वो अनंत टोटल जीव कितने हैं, तो वो सारे अनंत मिलकर उसमें और त्रस भी ऐड कर दो, अन्य भी ऐड कर दो प्रत्येक शरीर वाले, वो सारे अनंत ही सॉरी असंख्यात मिलकर भी वो अनंत ही कहलाएंगे। तो उसका ये असंख्यात वा भाग है, बस इतनी बात क्यों कह रहे, बस इसको समझना है। अब अजघन्य और अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, वे उनके असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। क्योंकि जो हमने जघन्य को निकाला, उत्कृष्ट भी असंख्यात जीव होते हैं, जघन्य अनंत होते हैं, और बीच वाले कितने हो गए, अजघन्य और अनुत्कृष्ट असंख्यात बहुभाग। इस प्रकार भागा भाग प्ररूपणा समाप्त हुई। अब कौन सी प्ररूपणा रहेगी, देखो पीछे अल्प बहुत्व रहेगी। अब अल्प बहुत्व कहेंगे,
कौन से सबसे कम है, कौन से बहुत है, उसकी बात करेंगे। तो उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे थोड़े हैं, केवल उसमें चार ही विकल्प करना, उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट है, जघन्य है, फिर उनसे जघन्य स्थान में वे अनंत गुणे हैं, और उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव असंख्यात गुणे हैं। तो गुणकार क्या है? तो कहते गुणकार अंगुल का असंख्यात वा भाग है। उसमें अगर आपको अल्पभूत करना है तो उत्कृष्ट लिया, फिर जघन्य लिया दो नंबर पर, अभी तीसरा, उनसे अजघन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है। अजघन्य कहने से क्या होता है? जघन्य छोड़कर सारे अजघन्य आ गए। फिर चौथे में अनुत्कृष्ट स्थान में उत्कृष्ट छोड़कर अनुत्कृष्ट लेना जी, हो पांचवा हो गया, क्योंकि बीच में हमने अजघन्य अनुत्कृष्ट लिया था, है ना, बराबर है। छह अल्पभूत आते इस प्रकार, ये पांचवा हो गया, उनसे सब स्थानों में जीव विशेष अधिक, ये छठा हो गया। अथवा अल्पभूत तीन प्रकार है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, वह हमने छह देखे थे, इसमें तीन ही बता रहे। उनमें जघन्य अल्पभूत प्रकृत है, हाँ, जघन्य स्थान में जीव सबसे स्तोक है, उनसे अजघन्य स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं, ये जघन्य का हो गया, जघन्य और अजघन्य इतना ही हो गया उसका, जघन्य के साथ अजघन्य लगाना, यानी दो दो अल्पभूत हो गए, ये जघन्य अल्पभूत हुआ, अभी उत्कृष्ट अल्पभूत हुआ, यानी उत्कृष्ट के साथ केवल अनुत्कृष्ट लगाएंगे। उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है क्योंकि वो असंख्यात होते हैं, और अनुत्कृष्ट स्थान में जीव उनसे अनंत गुणे हैं, ये दो अल्पभूत हो गए उसमें उत्कृष्ट के। अब अजघन्य अनुत्कृष्ट अल्पभूत कहते हैं, उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है, जघन्य स्थान में जीव उनसे अनंत गुणे हैं, और अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे असंख्यात गुणे, अनंत से असंख्यात गुणे, इसमें तीन अल्पभूत आएंगे। अच्छा आगे भी है, उनसे अजघन्य स्थान में जीव विशेष अधिक है, उनसे अनुत्कृष्ट स्थान में जीव विशेष अधिक है, जैसे पहले बताया था, और उनसे सब स्थानों में जीव विशेष अधिक है, पहले उन्होंने जो बताया था ना वैसा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये ज्ञान आवरण की पहले उत्कृष्ट से शुरू करके अनुत्कृष्ट और जघन्य तक आए, फिर वो सभी उसमें वो छह प्ररूपणा बताई, यानी इसके प्ररूपणा प्रमाण वगैरह श्रेणी भागा भागा और हर प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 29 पृष्ठ पर आते हैं, 14 नंबर का सूत्र, एवं दंशनावरणीय मोहनीय अंतरायाणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय कर्म के भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए। बाकी को क्यों नहीं लिया? कम होगा कि ज्यादा होगा?
अलग होगी,
नहीं नहीं, जर ब्रह्मा को सोचने दो ना, क्या अलग होगा? देखो, जो जीवों की अवगाहना है उतना आठों कर्मों की अवगाहना होगी, परंतु इसमें इसकी को लिख क्यों लिया, बाकी कर्मों को क्यों छोड़ा?
क्योंकि ये साथ में
तो बाकी रहते ही फिर
नाम गोत्र तो इसके लिए खाली शरीर बनाने के लिए।
अरे होने दो ना, अपन अभी जो नाम गोत्र जितना है वो महामत्स्य का, उसका ज्ञानावरण जितना है उतना ही नाम गोत्र है, तो उसको क्यों नहीं लिया आप कहेंगे? क्या विशेषता दी यहाँ पर?
चलो लक्ष्मी बता दो। देखो देखो केवल ज्ञानी जो है, केवल ज्ञानी की केवली समुदाय में वो बाकी जो अगाती को वहां पर लेना उनकी आयु में भी वो मनुष्य आयु को ले सकते हैं वहां पर। हम ये तो मूल प्रकृतियों की बात हो रही है, हमें इसके उत्तर भेद नहीं देखे हैं। तो ये जो समझ में ना, हाँ यानी ज्ञानावरण के लिए वो केवली समुदाय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां तो ज्ञानावरण है ही नहीं है, इसलिए उसके लिए महामत्स्य लिया। तो जैसा ज्ञानावरण महामत्स्य में वैसे दर्शनावरण भी है, मोहनीय भी है और अंतराय भी है। ये हमको इमीडिएट सोचना है, बाकी क्यों नहीं, ये तीन ही क्यों लिया? क्योंकि वो तो घाती कर्म है, उसको ही लिया यहाँ पर। अघाती को केवली में ले लेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं आगे, अभी देखेंगे। हाँ देखो देखो, एवं धनुषाणी मोनि अंतरायणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय मोनि और अंतराय कर्म के भी उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट वेदना क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए। जैसे ज्ञानावरणीय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही इन तीन घाती कर्मों के उत्कृष्ट क्षेत्रों की प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई उक्त यानी उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी सारे जगन्य तक, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। अब कहते स्वामित्तेन उक्कस्य पदे वेदनीयस्य वेदना चित्तदो उक्कस्य कस्य। तो कहते स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में वेदनीय कर्म की वेदना, वेदनीय कर्म की वेदना यानी अभी वेदनीय कर्म का जो क्षेत्र लेना है, उसकी जो प्रकृति, उसका जो द्रव्य है, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है? तो कहते अभी प्रश्न को ही समझा रहे हैं, किसके होते वो नेक्स्ट सूत्र में उत्तर देंगे। तो उत्कृष्ट पद में इस निर्देश से यानी इस कथन से जघन्य पद का प्रतिषेध किया गया है। वेदनीय कर्म की वेदना, इस निर्देश से शेष कर्मों की वेदना का प्रतिषेध किया गया है, यानी अकेले वेदनीय की बात कर रहे हैं। क्षेत्र का निर्देश करने से द्रव्यादि वेदनाओं का प्रतिषेध किया गया है। द्रव्यादि वेदना ने उसके परमाणु वगैरह की संख्या की बात नहीं है जो हमने दसवीं पुस्तक में देखी थी, यहाँ क्षेत्र की बात है। किसके होती है इससे उक्त वेदना? क्या देव के होती है, क्या नारकी के, क्या तिर्यंच के और क्या मनुष्य के होती है, यह पूछा की गई है। ये चार में से किसके होती है कहेंगे? मनुष्य। फिर भी वो केवली की बात बताएंगे। हाँ अब उसका उत्तर देते हैं। अन्नदरस्य केवलिस्य केवली समुघादेन समूहदस्य सवलोगम गदस्य तस्य वेदनीय वेदना खेत्तदो उपस्य। अन्यतर केवली के, अन्यतर कोई भी केवली हो सकता है, तीर्थंकर होने चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो समुद्घात वाले केवली ले लेंगे, जो केवली समुद्घात से समुद्घात को वो उसमें ही सर्वलोक अर्थात लोक पूर्ण अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि दंड और कपाट में तो एरिया छोटी है। हाँ वो लोक पूर्ण लेना एक समय वाली, उनके वेदनीय की वेदना क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है, हो तो है नहीं होती है। अन्यतर पद के निर्देश से अवगाहना विशेषों के और भर्तादि क्षेत्र विशेषों के प्रतिषेध का अभाव बतला गया। क्या कहना चाहते हैं? अन्यतर ने कोई भी केवली लिया, यानी बड़ी अवगाहना वाले केवली ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि समुदाय करने के पूरा लोक ही व्याप्त हो जाता है। तो भरत क्षेत्र का केवली हो, विदेह का हो या अवगाहना कितने भी हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए अन्यतर कह दिया। केवली पद का निर्देश करके छद्मस्थों का प्रतिषेध किया गया है, क्योंकि केवली कहने से उन्हीं की समुद्घात अवस्था में होता है। केवली समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त इस निर्देश से स्वस्थान केवली का प्रतिषेध किया है, यानी समुद्घात नहीं करने वाले केवली का निषेध कर दिया है। सर्वलोक को प्राप्त यानी लोक पूरण लेना है, इस निर्देश से दंड कपाट और प्रतर समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का प्रतिषेध किया गया है। सर्वलोक पूर्ण समुद्घात में रहने वाले केवली के उत्कृष्ट वेदनीय वेदना होती है, यह उसका अभिप्राय है। यहाँ पर उपसंहार सुगम है। उपसंहार यानी उसका कैलकुलेशन, यानी पूरा लोक है। पहले उन्होंने उपसंहार करके कैलकुलेट करके बताया था, अभी तो उत्कृष्ट हो गई, उससे व्यतिरिक्त अनुत्कृष्ट बताएंगे। तव व्यतिरिक्त अनुकसा, उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट है। देखो जब अभी हमने ज्ञानावरण में एक एक प्रदेश की बात देखी थी, उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट, तो यहाँ उत्कृष्ट के बाद पहला अनुत्कृष्ट भेद कौन सा होगा? प्रतर वाला होगा, केवल वायुवात वाले को छोड़ा। अभी कपट में कौन सा कपट लेना? पूर्वाभिमुख वाला लेना के उत्तराभिमुख लेना? देखो सात राज्यों ने दक्षिण उत्तर फैला है, यानी उसका पूर्व की तरफ मुंह है। पूर्वाभिमुख उसमें भी, पूर्वाभिमुख में भी उसके जो एरिया पद्मासनस्थ वाला लेना है, क्योंकि उसके एरिया तीन गुना यानी और ज्यादा फैल जाती है। इसको उपविष्ट और स्थित ऐसे दो नाम है, तो अभी बताएंगे, मैंने अभी नहीं पढ़ा। देखो तव वदीर्ता अनुकस्सा, उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट है। इस उत्कृष्ट क्षेत्र वेदना से भिन्न क्षेत्र वेदना अनुत्कृष्ट होती है। अनुत्कृष्ट क्षेत्र वेदना विकल्पों में उत्कृष्ट यानी अनुत्कृष्टों में से उत्कृष्ट, ऐसा उसका अर्थ है। वेदना के स्वामी प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली है, क्योंकि अनुत्कृष्ट क्षेत्रों में इससे और कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है। ये उत्कृष्ट के बाद नेक्स्ट नंबर इसी का है, इन बिटवीन कोई दूसरे विकल्प नहीं है। यह क्षेत्र उत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा विशेष हीन है, क्योंकि वो पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो लोक के सामने उसकी एरिया बहुत छोटी हो जाती है, तो विशेष हीन। और क्योंकि इस क्षेत्र में जीव के प्रदेश वात वलयों के भीतर नहीं रहते, यानी लोकाकाश के आउटर जो वात वल है उसको छोड़कर, हर पृथ्वी के नीचे वात वाले वो तो कवर हो ही जाएंगे आउटर साइड के। सबसे बड़ी अवगाहना द्वारा कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली तदनंतर अनुत्कृष्ट क्षेत्र स्थान के स्वामी है। क्या कहते हैं? अभी इसमें अवगाहना भी ले लेना, क्योंकि अवगाहना और वो भी अवगाहना में भी पद्मासनस्थ लेना। बड़ी अवगाहना है जो अभी हम कहते ना, तो करोड़ पूर्व की आयु वाले और बड़ी अवगाहना वाले जो 525 धनुष वाले, तो उनकी अवगाहना इतने तो क्षेत्र ऑलरेडी है ही है, और वो ऐसे आड़े फैलते हैं, क्योंकि उतने अवगाहना के साथ पहले वो दंड करेंगे और बाद में आड़े फैलेंगे, तो वो जीव लेना, और वो भी पूर्वाभिमुख। यह पूर्वाभिमुख की बात नहीं ली उन्होंने, पर होनी चाहिए। हाँ लिख के रखो ना, क्योंकि वो पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख में डबल का डिफरेंस पड़ता है। देखो कैसे, थोड़ी मैं बता देती हूँ। देखो दंड मान लेते, ऐसा किया उसने, उतनी एरिया सहित आड़े फैलेंगे, तो पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख है तो दक्षिणोत्तर फैलेंगे, तो दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राज्यों में। अभी वो वात वलयों का हम गौण करके भी अगर फैलेंगे देखेंगे तो उसकी एरिया कैसी होगी, ऐसा सात राजू और ऐसा 14 राजू करीबन, कुछ कम, और फिर उसके विर्थ जितने उतने ले लेना। अब वही अगर जीव उत्तर के तरफ मुंह है, तो उत्तर की तरफ मुंह है तो उसके प्रदेश कैसे फैलेंगे, जो इस तरह से ये उसके इस तरह से आड़े फैलेंगे, तो उसके कितने से, एक ये पांच, ये एक ये सात, यानी 3.5 हो जाते हैं, 3.5 गुना 14, और इनटू उसके हाई जो विड्थ जो कुछ है, विड्थ दोनों की समान है। डिफरेंस क्या हुआ, वहाँ 7 × 14 राजू था और यहाँ 3.5 यानी 7/12 × 14 राजू होता है, आधे का डिफरेंस पड़ता है। इसलिए पूर्वाभिमुख वहाँ साइड में लिखी रखो अब कि सबसे बड़ी अवगाहना द्वारा समुद्घात को प्राप्त केवली, वो कौन से पूर्वाभिमुख, तदनंतर अनुत्कृष्ट क्षेत्र स्थान के स्वामी है। विशेष इतना है आगे लिखा है, नहीं 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 लिखा, पूर्व के यानी पहले वाले उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट क्षेत्र से, पूर्व के अनुत्कृष्ट क्षेत्र से द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात गुणाहीन है, क्योंकि संख्यात सुच्चंगुल बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण कपाट क्षेत्र की अपेक्षा मंथ क्षेत्र ने प्रतर असंख्यात गुणा पाया जाता है। उन्होंने वो डायरेक्ट कपाट से ही प्रतर की कंपैरिजन की है, पहला अनुत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा, प्रतर वाला, और द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र कौन सा है, कपाट वाला, दोनों में असंख्यात गुणा का डिफरेंस है। क्या कहना, अनुत्कृष्ट में 2 है, कपाट में अभी हमने देखा था ना, ये कपाट वाली उत्कृष्ट अवगाहना 7 × 14 × उसकी विड्थ, और वहां कितना उसकी विड्थ प्रमाणित तीसरी डायमेंशन थी, तीसरी डायमेंशन कितनी होगी, संख्यात अंगुल होगी, और ये कितनी बड़ी हो जाती है, पहले हमने इसे 7 देखा था, वो इंटू और 3.5 हो जाएगी, करीबन की बात है ना। पहले तो कितने अंगुल, इतने ही जितनी उनकी अवगाहना है उतने अंगुल थे, अब कितने हो गए, 3.5 राजू इतने हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी फैलेंगे 3.5 राजू, ऐसे 7 राजू फैले हैं, ख्याल में आती है बात। इसलिए वो असंख्यात गुणा हो जाता है, यानी संख्यात अंगुल सुच्चंगुल कंपेयर टू कितने ही राजू, तो असंख्यात गुणा हो जाता है। अब कहते एक प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भ युक्त अवगाहना से कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली तृतीय क्षेत्र के स्वामी है। अभी वो विष्कम्भ है ने उसकी जो चौड़ाई है, अभी उनके जो हाइट वाइज में तो कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं, क्योंकि हाइट तो उतनी ही फैलती है। हाँ, अभी चौड़ाई के में उसमें एक प्रदेश कम दो प्रदेश कम इस तरह से घटित करेंगे। विशेष इतना है कि द्वितीय अनुत्कृष्ट क्षेत्र की अपेक्षा तृतीय क्षेत्र विशेषहीन है, क्योंकि इसमें पूर्व क्षेत्र की अपेक्षा 2 जगत प्रतर मात्र क्षेत्र की हानि देखी जाती है। 2 जगत प्रतर यानी वो 14 राजू वाली क्षेत्र की हानि देखी जाती है, यानी इसकी इतनी अवगाहना एक प्रदेश भले कम करे परंतु हाइट वाइज तो उतना गुना तो करना ही पड़ेगा, यानी वो एक एक प्रदेश के डिफरेंस से नहीं है, पूरी टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस पड़ता है। 2 प्रदेश कम उत्कृष्ट विष्कम्भ से कपाट को प्राप्त केवली चतुर्थ अनुत्कृष्ट क्षेत्र के स्वामी है। यह भी अव्यवहित पूर्व के क्षेत्र की अपेक्षा 2 जगत प्रतर मात्र विशेषहीन है। 2 जगत यानी 14 राजू वाली बात लेना, जो 2 जगत प्रतर है। यानी आगे पीछे की अपेक्षा उसका एक एक प्रदेश कम करना है, यानी विदाउट ब्रेक। इस प्रकार सांतर क्रम से, सांतर क्रम क्यों लिया, एक एक प्रदेश से हीन वाली बात नहीं है, अवगाहना में एक एक प्रदेश कम करेंगे तो भी वो 7 राज्य और 14 राज्य वाला जो डिफरेंस है, हाँ उसमें तो एकदम गैप आ जाता है बहुत बड़ा। सांतर क्रम से 3.5 रत्नी उच्छेद युक्त हमने बढ़िया उगाना 525 योजन से धनुष से चालू की थी, और मिनिमम अवगाहना केवली की कितनी होती है तो 3.5 रत्नी, जिसको 3.5 हाथ कहते हैं, रत्नी ने हाथ। महावीर भगवान की कितनी थी? 7-8। ये 3.5 हाथ मिनिमम किसी के। हाँ, अभी जो छोटी आयु में कोई, यहीं पर होगी ना, भरत में ही होगी, भरत ऐरावत में होगी, इतनी छोटी उगाना। और शॉर्ट भी हो सकते ना, अरे हो, पर उसमें उस काल में भी शॉर्ट होगे कि नहीं? अभी हमारी एवरेज है यहाँ पर, एवरेज हाइट यहाँ की अभी 6 फुट समझो ना, 6-5.5 जो कुछ समझो, फिर भी शॉर्ट जिसको कहने वामन ठिंगने भी कोई होगी कि नहीं होगी? और कोई संस्थान कोई भी हो सकता है, 6-3 हाथ नहीं, एक हाथ, हाँ 4 हाथ नहीं, 6 फुट होता तो अभी इतने तो हो सकती है ना, यानी 5वें काल में भी इतनी मिनिमम अवगाहना होगी। तो कहते 3.5 रत्नी उच्छेद युक्त, उच्छेद ने हाइट उनकी, अवगाहना के विष्कम्भ से हीन। अभी उसका अवगाहना वाले जो है उसकी जो जितना विष्कम्भ होगा वो कैलकुलेट करना है। 3.5 हाथ तो उसके, 3.5 रत्नी तो उनकी हाइट हुई, अब उसके हाइट के लिए जितनी उनकी बॉडी की विड्थ होगी, हाँ उसको विष्कम्भ कहा। उससे हीन 525 धनुष उच्छेद युक्त अवगाहना के विष्कम्भ प्रमाण, उसके विष्कम्भ में से इसका विष्कम्भ माइनस करो। कपाट क्षेत्र के विकल्पों तक, यानी ये अवगाहना के इतने जो भेद है, केवली के अवगाहना के भेद है, उतने विकल्प हो गए। क्षेत्र स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए, ये अनुत्कृष्ट के इतने सांतर भेद हो गए वहां पर। अभी हम यही रुकते हैं क्योंकि वो केवल पढ़ने से फायदा नहीं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। भाई।